The following is a lecture on La Avagnipan and Raj Pravesh from the Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 18, verses 16 through 32, on the topic of Sri Balaram slays Pralambasur. This lecture is given by His Holiness Radha Govinda Das Goswami in Haridwar, India on May 6, 2000.
Evam taulo siddhavi kridavischedaturbane nadyadri droni kunjesu kananesu sarasu cha. पशुं चारयतो तद्वने रामकृष्णयः गोपरूपी प्रलम्बोगात् असुरस्तज्जिहीर्षया. कंस सर्वदा कृष्ण और बलराम के वध की चेष्टा किया करता था, तो उसने अपने एक बहुत ही बलवान प्रलम्ब नामक दैत्य को भेजा. तो प्रलम्ब एक सिद्ध व्यक्ति था. सिद्ध का अर्थ है उसे अनेक सिद्धियां प्राप्त थी और वह अपनी इच्छा के अनुसार रूप बना सकता था. कृष्ण बलराम जब अन्य गोप सखाओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे तो वह असुर भी गोप का वेश धारण करके, एक सखा का वेश धारण करके और उन लोगों के साथ खेलना चालू किया. क्यों? तज्जिहीर सया, कृष्ण और बलराम को हरने के लिए, ले जाकर कहीं मारने के लिए क्रीड़ा चालू किया. ऐसी घटना हुई कि एक दिन जिस दिन वो आया, एक गोप बच्चा नहीं आया था, घर पर रह गया था. तो जो बच्चा घर पर रह गया था उसी का वेश बनाकर और खेलने लगा. इसलिए अन्य गोप तो कोई नहीं पहचान पाया, यहां तक कि बलराम जी भी नहीं पहचान पाए. परंतु भगवान सब समझ गए. तो खेल चालू हुआ तो भगवान की यह इच्छा हुई कि इसका वध करना चाहिए, और उसकी इच्छा थी कृष्ण बलराम को मार देना चाहिए. तो सखा बनकर आया तो भगवान ने उसके सख्य का अनुमोदन किया. वो तो बाहर से प्रकट कर रहे थे कि हाँ हमारा मित्र है, आज भी आया है, आता ही रहता है रोज. और सब गोप सखाओं को श्री बलराम जी को इसका पता नहीं. तो गोप रूपी प्रलम्बोगात, गोप रूपी प्रलम्ब अगात असुर तज्जिहीर सया तौ जिहीर सया, कृष्ण और बलराम दोनों को हर कर ले जाने के लिए, मारने के लिए. तो भगवान सब जानते थे, तम विद्वान अपि दासार हो भगवान सर्वदर्शन अनुमोद तत्सख्यम वधम तस्य विचिन्ता. तम विद्वान अपि, प्रलम्बासुर को खूब अच्छी तरह से जानने वाले और उसके स्वभाव के ज्ञाता भगवान सर्वदर्शन जदवंशी श्री कृष्ण ने उसके सख्य का अनुमोदन किए, उसके साथ खेलना स्वीकार किए. चला भगवान सब कुछ देखते हैं. सर्वम पश्यति इति स सर्वदर्शन, जो सब कुछ देखे उसको सर्वदर्शन कहते. गोप बन के आओ, चाहे ब्राह्मण बनकर आओ, चाहे गाय बनकर, बैल बनकर, सब भगवान समझ जाते थे कौन क्या है. और सर्वदर्शन का अर्थ है उसके मारने की विधि को भी वो देख लिए कि ऐसे मारेंगे. अथवा सर्वाह दर्शना तात्पर्य रूपेण जस्मिन परिवसंती इति सर्वदर्शन, सारे दर्शन अंत में श्री कृष्ण का ही वर्णन करते हैं, इसलिए भी उनको सर्व दर्शन कहते हैं। तो सर्वज्ञ भगवान समझ गए उसकी दुश्चेष्टा को, उसके दूषित अभिप्राय को, और इसलिए उन्होंने बड़े ढंग से खेल खेला। तो खेल भगवान ने कहा कि आज हम लोग बाह्य और बाहक का खेल खेलेंगे। भंडीर वन में वे लोग पहुंचे थे खेलते, उस दूर अभी तक खेलते खेलते पहुंचेंगे। भगवान ने कहा कि ऐसा करें, हम लोग दो दल में बांट जाएं और दोनों में कुछ खेल हो, जो दल हारेगा वो बाहक बनेगा, ढोने वाला, और जो जीतेंगे वे बाह्य बनेंगे। बाह्य का अर्थ है जिनको ढोया जाएगा। बच्चे इस तरह से बाह्य और बाहक आज भी बनते हैं, और चढ़ करके पीठ पर थोड़ा चले जाते हैं तो सोचते हैं हमको बहुत सुख मिल गया। हम गांव में देखते हैं बैलगाड़ी वाले या तांगा वाले हा हा करने करते रहते हैं, बच्चे पीछे से झूल जाते हैं, रिक्शा पर भी झूल जाते हैं, वृंदावन में भी देखते। थोड़े काल तक झूल करके चले गए तो उतने में ही वो संसार के सारे दुख भूल जाते हैं, उनको परम सुख की प्राप्ति होती है। ये खेल चालू किया भगवान ने, और वो जानते थे कि यह जब खेल चालू किया जाएगा और हम अपनी पार्टी में रखेंगे, इसको अपने दल में रखेंगे, और हम लोग जानबूझकर हार जाएंगे तो हम लोग ढोने वाले होंगे, या श्री बलराम जी को ढोएगा। भगवान ने सोच लिया कि इसका वध बलराम जी के हाथ से ही कराना है, उनको जस देना है, और प्रलंबासुर कृष्ण से कुछ डरता था। तो बहुत बहुत पुतना बकासुर तृणावर्त आदि सुन चुका था, सब तो मथुरा से ही आते थे और इधर से लौटते नहीं थे, जब गत्वा न निवर्तन सूचना देने भी नहीं जाते थे कंस के पास कि क्या हुआ, कैसे मरा। कोई दूसरे के द्वारा खबर मिलता होगा कंस को कि वो तो पुनरावर्तन नहीं किया, रह गया वृंदावन में। तो बहुत फैला था यश श्री कृष्ण का, इसलिए उनसे डरता था। तो भगवान ये अभी देख लिए थे, तो मुख्य रूप से अब वो बलराम जी को मारना चाहता था, जानता था कृष्ण को मारना है खतरा है। पूतना आई थी मारने के लिए तो वही मर गई, तृणावर्त आया था मारने के लिए वही मर गया, सकटासुर मर गया, और अभी अभी घटना घटी थी काली नाग का दमन कर दिए इतना भयंकर सर्प का, और आग पी गया, तो सब न्यूज पेपर में छपता ही था, सब जगह फैल जाती थी बात, पूरे ब्रह्मांड में, केवल पृथ्वी पर ही नहीं। तो डरता था कृष्ण से। तो भगवान ने कहा ठीक है चलो दो दल में हो जाए। तत्रोपा हुई गोपालान कृष्ण प्राह बिहार में, गोपों को इकट्ठा किए, हे गोपालों सुनो, हम आज नया खेल खेलेंगे। खेल खेलते खेलते बहुत खेल पुराने हो गए, अब नया खेल खेलेंगे। तो सुनो, प्राह प्रकर्षिण आह, वो पुकार करके और अपनी लालसा को व्यक्त करते हुए कहे, लालसा तो प्रलंबासुर को मारने की थी, खेलने की नहीं, लेकिन भगवान ऐसा भाव व्यक्त कर रहे थे कि हम बहुत दिन से खेलना चाहते हैं, ये खेल खेलना चाहते हैं। तो आओ हे गोपा बिहरी श्याम द्वंद्वी भूय जथा जथम, हम लोग दो भाग में बट करके और खेल खेलेंगे। ठीक है, तत्र चक्रु परिब्रीढ़ गोपा राम जनार्दन, तो दोनों दल के नेता बसैत परिब्रीढ़ बने कृष्ण और बलराम, नेता दोनों के। यद्यपि कृष्ण के विरुद्ध बलराम जी कभी नहीं खेलना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण की यही हार्दिक इच्छा रहती थी, इसलिए वे उनको सुख देने के लिए एक भिन्न दल में हो जाते थे। तो एक ही प्राण है, सभी कृष्ण प्राण बंधु हैं, लेकिन दो दल में बंट कर शत्रु जैसे खेलते, प्रतिस्पर्धा करके। तो एक भाग में श्री बलराम जी हो, उन्होंने कहा कि हम दो प्रधान रहेंगे, एक तरफ मैं और एक तरफ श्री बलराम। तत्र चक्र परिपीढ़ो गोपा राम जनार्दन, कृष्ण संघटिन केचित आसन राम से चापरे। कोई कृष्ण के दल में हुए, कोई राम के दल में हुए। पहले कृष्ण का क्यों रखा गया है कि प्रत्येक बच्चा यही चाहता था हम कृष्ण के तरफ रहेंगे, इसलिए कृष्ण का पहले लिखा गया। परंतु एकदम समान संख्या बांटी गई, एक भी कम नहीं। पर श्री कृष्ण को सुख देने के लिए जब कृष्ण ने कहा कि नहीं तुम भैया की तरफ रह जाओ, बलराम की तरफ रह जाओ, तो हो जाए ठीक है चलो, किसी तरह कृष्ण को सुख देना है। लेकिन उनकी इच्छा पर छोड़ा जाए तो सब कृष्ण के साथ रहना चाहते थे, क्यों कृष्ण के विरुद्ध खेले, बच्चों की इच्छा रहती थी। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी अर्थ करते हैं, तो कृष्ण संघटिना, कृष्ण के संघाती कुछ लेते उनके दल में, केचित आसन रामस्य च अपरे, केचित च अपरे रामस्य। आचार्य विधा क्रीड़ा, बहुत क्रीड़ा की है, बहुत प्रकार की क्रीड़ा की है। और क्रीड़ा में शर्त क्या रहती थी, हारने वाला बाह्य बनेगा, नहीं हारने वाला बाह्य, जीतने वाला बाह्य और हारने वाला बाहक, मतलब जो हारेगा वो घोड़ा बनेगा और जो जीतेगा वो सवारी करेगा। यही लक्षण अंतिम फाइनल खेल का यही रूप रहता था। किसी चीज में मान लीजिए रस्सा कसी कर रहे हैं, जो हार गया वो घोड़ा बनेगा, ये कोई खेल कर रहे हैं जो हार गया घोड़ा बनेगा, तो इस तरह से कर रहे थे। जत्रारोहंती जेतारो वहंती च पराजिता, जेतारह आरोहंती पराजिता वहंती। साफ उसी की व्याख्या कर रहे, जेतार जीतने वाले आरोहंती, आरोहण आरोहण करते थे चढ़ते थे, और पराजिता है वहन, तो उनको ढो करके चल दे, अपने से दुगना वजन उठाकर चल देते थे, पीठ पर उठाते थे चाहे कंधा पर उठाते थे, जैसे जहां भी उठा उठाकर चल देते। वहंतो बाह्यमानाश्च चार्यंतश्च गोधनम भांडी रकम नाम बटम जगमुह कृष्ण पुरोहित। तो प्राय दोनों पक्ष कभी जीत जाते थे, मैंने बारी बारी से, तो इस तरह से ढोते हुए ढोवाते हुए तो कुछ दूर गए, कहां गए, भांडीर बट के पास, भांडी रकम नाम बटन जगमु कृष्ण पुरोगमा। लेकिन कहां जाना है, कहां धोना है, ये सब निर्णय कृष्ण करते थे। ऐसे स्थान में वो ले जाना चाहते थे जहां से बलराम जी को चुरा कर ले जाने में उसे सफलता मिले, तो सबके सामने कैसे वो उस डेस्टिनेशन से आगे बढ़ सकता था। जब ही आगे बढ़ता तो भगवान कृष्ण पकड़ सकते थे, बहुत डरता था। आगे वर्णन है कि बलराम को ले जाते समय कृष्ण न देख ले, नहीं तो हमें भी मार डालेगा, उसको इस शंका थी। देखने में कृष्ण छोटे थे लेकिन उनका यश बहुत फैल चुका था। अभी अभी जो कालिए जैसे सर्प पर नाच करके आया हो लड़का, और न दस आए न बीस न फीस कुछ नहीं, क्यों नहीं कीर्ति बढ़ी होगी सब जगह। इसीलिए वो भांडीर वन में ले जाना चाहते थे भगवान, जहां ज्यादा झुरमुट हो, वन घना हो, जिसे लेकर के छिपे और उड़ जाए, भगवान चाहते थे कि ऐसा वो करे, तब बलराम जी मारेंगे उसको। और बलराम जी तब उसको मारे जब अपने रूप में हो गया आकाश में। वहां हरीश्वर जी कहते हैं कि कैसे गोप गोप को मारे, अपने सखा को कैसे मार सकते थे, भले कपटी था लेकिन सखा बन करके आया था, तो भगवान कैसे मारे। असु रूप में हो गया तब मुष्टिका मारे उसके सिर पर गिर पड़ा। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं बहुत खेल किए, वहंतो बाह्य मानस्य चारियं तस्य गोधनम भांडीडकम नौ बटम जगमुह कृष्ण पुरोग बाह्य मानस्य और बाह्य मानस और कह रहे हैं कि गोधनम चार गौओं को चराते हुए बीच बीच में गाय भी देखते थे खेलते थे कुछ कहते थे गौ इधर उधर बिखर गए हमको जरा हाँ करागे करो आगे वो चले चलते हैं हम लोग पीछे से खेलते चाहे कभी कभी याद आती थी कि एक बार बछड़े चोरी चले गए थे एक बार ये हो गया था तो कहीं कोई इधर उधर चुरा न ले चाहे कहीं इधर उधर गिर न जाए दूर न चली जाए इसलिए निगाह रखते थे गौओं पर भी बस थोड़े देर के लिए मुख्य आवेश से खेलने का था। तो राम संघटिनो जरहि श्रीदाम विषभादय क्रीड़ायाम जैनस तानुहु कृष्णा दयो नृप श्रीराम के जो संघाती थे श्रीदाम और वृषभ आदि वे जीत गए। लास्ट खेल की बात बता रहे हैं इसके पहले तो श्री कृष्ण बहुत बार जीते थे और उनका दल लेकिन अंतिम खेल में श्रीराम जीत गए और श्रीराम के साथ श्रीदाम थे और वृषभ क्रीड़ायन जय न ये क्रीड़ा में जयी हो गए तो तान उहु कृष्ण दयो नृप तो इनको कृष्ण आदि ढोना चालू किए और कृष्ण के पक्ष में प्रलंबासुर था तो वो भी ढोया तो भगवान तुरंत बैठ गए और श्रीदाम जी को कहे कि मैं आपको ढोऊंगा तो वो जो था वो उसके सुनते ही तुरंत कहा मैं बलराम को ढोऊंगा मरने का समय आ गया है तो ढो बलराम को ढोएगा भगवान ने कहा हाँ हाँ ठीक है बलराम को ढो और भद्रसेन वृषभ को ढोए इधर के तीन सखा का नाम है तीन में से एक तो असुर था और उधर से सच्चे सखा का नाम है मतलब जो जीते हैं उनमें से तीन का नाम है बलभद्र और श्रीदाम और वृषभ ये तीन जीते हैं और हारने वालों में कृष्ण और भद्रसेन और प्रलंब तीन का नाम इधर है और भी बहुत से लोग थे जो हारे हुए थे अपने अपने प्रतिद्वंदी को ढो रहे थे तो कौन किसको लिया वाह कृष्णो भगवान श्रीदामानं पराजित भगवान अपि पराजित सन भगवान कृष्ण पराजित होकर श्रीदाम को ढो रहे थे श्रीदाम को चढ़ाए कंधे पर यहाँ सुखदेव गोस्वामी कितनी मधुर भाषा में कह रहे हैं भगवान पराजित समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण श्री कृष्ण पराजित हुए भगवान प्रेम से पराजित हुए और कई बार चढ़े थे तो क्या फिर ढोएंगे नहीं कभी तो ऐसा होना चाहिए ऐसा सूरदास जी ने लिखा है कि एक बार ऐसा खेल चल रहा था यही सवारी का और हरिहारे जीते श्रीदामा हरिहार गए और श्रीदामा जीते तो श्रीदाम जीत गए कहने लगे चलो बैठो तुम पर चढ़ूंगा घोड़ा बनो तो श्री कृष्ण कहे नहीं मैं नहीं बनूंगा क्यों तो मैं नंद महाराज का लड़का हूँ राजा का लड़का हूँ इसे अरे गहरे गोप का लड़का नहीं बन सकता मैं धनी का पुत्र हूँ हमारी गाय इतनी है ये है वो है तो श्रीदाम कहते हैं कि इससे क्या जहां तुम्हारी गाय है वहां घर जिसके पुत्र राजा के पुत्र हो तो इससे क्या खेल में सब बराबर होते हैं अगर घोड़ा नहीं बनोगे तो आज से हम लोग तुमको अपने दल में खेलने नहीं देंगे अकेले वृंदावन में गाय चराओ या चाहे खेलो जो कुछ करना हो घोड़ा बनोगे कि नहीं बोलो श्री कृष्ण और गए कहे ना तो श्रीदाम कहे कि इसको अलग करो खेल से सब लोग चलो खेलो तो सब बच्चे खेल रहे थे कृष्ण को बैठा दिया अलग और कृष्ण वहां रो रहे थे बैठ कर अरे बच्चे खूब सुना सुना करके हंसते थे, खेलते थे। अब कृष्ण को कहते थे अब खेलो, जाओ खेलो। तब फिर श्रीदाम पूछते घोड़ा बनोगे, कृष्ण कहते हैं हाँ। जब घोड़ा बने और श्रीदाम चढ़े तब जाकर के फिर दल में मिलाए। तो भगवान हो चाहे कुछ भी हो, अपने घर में भगवान है, खेल के मैदान में सब बराबर। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान पराजित, जो सर्वजयी है, जत्र जोगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय भूत, लेकिन वे भगवान ब्रज सखा से पराजित और प्रेम से ढो रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण पराजित होकर श्री दामा को ढोए, वृषभम भद्र सेनस्तु, और भद्रसेन वृषभ को, और प्रलम्बो रोहिणी सुतम, और प्रलम्बासुर रोहिणी कुमार को ले चला। खूब अच्छा से चढ़ाया होगा, बैठ जाओ। और उसको सिद्धि थी, वो विमान की तरह फर्श खुला, ले चला आकाश। राम जी तो पहले घबरा गए, ये क्या हुआ, बहुत ऊपर उड़ान भरा ले गए। प्रलम्बो रोहिणी सुत अविसह्यम मन्यमान कृष्णम दानव पुंगव बहन द्रुत तरम प्रागत अवरोहण तह परम। यहाँ प्रश्न होता है कि कंस के असली वैरी तो कृष्ण थे, तो कृष्ण को छोड़कर के बलराम जी को क्यों उठा ले गया। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अविसह्यम मन्यमान कृष्णम, कृष्ण को अविसह्य मानता था, इससे पार नहीं पाऊंगा। इसलिए रोहिणी कुमार को ले गया। अच्छा, लेकिन यहाँ पर इसका तत्कालिक अर्थ यह है कि अविसह्य मन्यमान कृष्णम, कृष्ण को अजेय मानता था, इसलिए कृष्ण की नजर बचा करके ले गया बलराम जी को। कृष्ण न देख ले कि उसके भाई कोई ले जा रहा है, ये तो कृष्ण का यश बहुत फैला था, वो कहीं से भी मार देगा पकड़ कर। इसलिए यहाँ तत्कालिक अर्थ है कि कृष्ण के दृष्टि से बच करके चला, और बहुत तेज चला, बहन द्रुत तरल। कृष्ण और भद्रसेन तो धीरे धीरे चल रहे थे, चाहे और सखा, ये दिखा रहा खूब तेज घोड़ा था, बिना चाबुक मारे चल दिया खूब तेज गति से, खूब तेज चला। तेजी से ये चला कि कृष्ण अभी पीछे छूट जाए और मैं आगे बढ़ करके लेकर के भाग चला। तो कृष्ण तो जानते हुए भी क्या केयर कर रहे थे, वो नहीं कहे कि ए इतना जल्दी क्यों जा रहे हो, साथ में चलो, भगवान ने नहीं कहा। वो जानते थे कि बलराम जी इसका वध कर देंगे, तो बहुत द्रुत तरम एक्सप्रेस खोला स्पेशल, द्रुत तरम द्रुतगामी लिखते हैं एक्सप्रेस को हिंदी में, तो द्रुत तरम बहुत तेज, द्रुत का अर्थ ही होता है तेज, और द्रुत तरम का अर्थ है भगवान कृष्ण आदि से 10 गुना स्पीड से चला होगा लेकर के। प्रागात प्रयागात वो भी प्रकर्षण आघात, कहां अवरोहणतः परम अवरोहते जस्मिन सा अवरोहण, जहां रुकना था उतारना था सवार को, वहां से बहुत आगे बढ़ गया और ढोता ही जा रहा है, और कुछ दूर के बाद जाकर जैसे तेज गति से विमान उड़ता है वैसे जमीन छोड़ करके आकाश पकड़ लिया बलराम जी को लेकर। यहां श्रीपद सनातन गोस्वामी कहते हैं श्री बलराम जी की इच्छा थी कि मैं भी जरा आकाश में उड़ू, जैसे ये उड़ा था एक बार त्रिणावर्त के साथ। इनकी इच्छा थी बलराम जी की, सुने थे ना एक बार कृष्ण को आया था त्रिणावर्त उड़ा करके ले गया बहुत दूर, तो कृष्ण चर्चा करते होंगे कि मैं उसको बहुत ऊपर ले गया और उसका गला पकड़ा तो ऐसे गिरा ब्रज में, मैं गिराया उसको। तो बलराम जी की इच्छा थी कि मैं भी तब एक दिन आकाश में उड़ूंगा, तो आ ही गया एयरप्लेन के लिए, अब उड़ने जा रहे। भाई थे इसलिए कुछ न कुछ इच्छा रहती थी, ये जैसे मारा है दैत्य को तो मैं भी मारूंगा। तो ले गया बहुत जोर से ऊपर, तुरंत उनको उपमा सूझ रही है, दे रहे हैं। देखिए, तम उद्वहत धरणी धरेन्द्र गौरव, धरणी धर पर्वत को कहते हैं और इंद्र का अर्थ श्रेष्ठ, समस्त पर्वतों में सुमेरु पर्वत सर्वश्रेष्ठ है। तो श्री बलराम जी को जो ही आकाश में वो ले चला, जमीन जो ही छोड़ा, तेम ही श्री बलराम जी अपना पूरा भार प्रकट किए, डर करके प्रकट किए। तो जितना वजन देंगे तो ऊपर नहीं ले जाएगा। तो धरणी धरेन्द्र गौरव, गौरव का अर्थ भारीपन है। बलराम जी सुमेरु पर्वत की तरह भारी लगने लगे उसको, जब ऊपर कुछ ले गया तो ऐसा उसे अनुभव हुआ कि मेरु पर्वत टांग करके चला, कितना अनुभव होने लगा। और उस दशा में तब उसने सोचा कि गोप रूप से तो इसको मैं टांग नहीं पाऊंगा, और पर्वत टांगना है तो अपने रूप में हुआ, तुरंत निजरूपमा स्थित अपने रूप में हो गया। तब सुखदेव गोस्वामी दृष्टांत देते हैं कैसा लग रहा था। तो यह एक काले विशाल बादल की तरह लग रहा था प्रलंब, और उस पर उगे हुए बादल के ऊपर उगे हुए चंद्रमा जैसे शोभा देते हैं, उस तरह बलराम जी लग रहे थे। गोरा है ही, उस काले बादल के ऊपर श्वेत उज्जवल चंद्रमा की तरह बलराम जी लग रहे थे। और यह पुरट परिच्छद सोने का अलंकार धारण किया था, बहुत बड़ा बड़ा, तो ऐसा लगता था कि बादल के ऊपर स्थिर विद्युत है। बिजली चमकती है तो स्थिर नहीं रहती है, लेकिन स्थिर विद्युत, और उसके ऊपर तुरंत चंद्रमा, ऐसा सुंदर लग रहा था। ये उपमा दे रहे हैं, उद्पति वाट, वाट का अर्थ वाहक, जैसे लगता था कि चंद्रमा को कोई ढो रहा है बादल अम्बुद, तद्दित दुमान, और तद्दित की तरह दुमान प्रकाशित, गहनों के लिए कहा जा रहा है। तो इस तरह वो ले गए बलराम जी को ऊपर। निरीक्षतद बपुरलमंबरे चरत प्रदीप्त संद्रिभ्रुकुटी तटोग्रद्रंष्टकम् ज्वलच्छिखम् कटक किरीट कुंडलत्विषाद्भुतम् हलधरैः दत्तसत्। ऊपर ले गया अलम अम्बरे, अलम का अर्थ है कि हाईएस्ट उड़ान पर ले गया, बहुत ऊंचा ले गया। अलम मने पर्याप्त, पर्याप्त ऊंचाई पर ले गया। उस समय उसकी विकट भ्रिकुटी थी, विकट आंख थी, और बड़े बड़े दांत, और उसकी शिखाएं ज्वलत चमक रही थी, खूब उज्ज्वल लग रही थी। कटक किरीट कुंडल, बड़े बड़े कान में कुंडल और कटक पैर में गहना आदि देख करके हलधर तो ईसब अत्र से थोड़ा डर गए, ईसक में थोड़ा भय आ गया, कांपने लगे। नीचे जब देखे तो बलराम जी का एक काफी कितना ऊंचा आ गया, ये कहां ले जाएगा, क्यों भय हुआ। बाल लीला कौतुकेन, भगवान अभी बालक है ना, बाल लीला कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा यह भी लीला किए, भय हो गया, थोड़ा सा भय हुआ। अथवा श्री सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि श्री बलराम जी को याद आया कि अरे मैं तो समझता था कि गोप सखा है, हाय रे कहीं कृष्ण को कोई न उठा करके ले जाए सासुर, इसलिए उन्हें भय हुआ। वहां भय का ये अर्थ, उस संकट की दशा में भी बलराम जी अपने लिए चिंतित नहीं है, श्री कृष्ण के लिए सोचने लगे कि जैसे मुझको ये उठा करके लाया, ऐसे कृष्ण को कहीं कोई ना ले जाए। जानते हैं भगवान है, फिर भी वात्सल्य भाव है बलराम जी का कृष्ण के प्रति, वहां डर। इसके बाद तुरंत याद आया कि मैं भगवान हूँ और पृथ्वी का भार दूर करने के लिए अवतार लिया हूँ, असुर का वध करना मेरा कर्तव्य है। तो जान गए, अब पहचाने की असुर है, अब तक नहीं जानते थे, नहीं तो वहीं पर गला दबा दी हो तो मर गया होता। अच्छा धो ही नहीं पाता तो भार वहीं बढ़ा दिए होते गोप रूप में तो वहीं मर गया होता, पिसल गया। अब पता चला तो जाते जब बलराम जी अपने स्वरूप में आकर अथागत स्मृति रभयो रिपिम बलो, स्मृति आ गई कि मैं जगदीश्वर हूँ और मैं अवतार लिया हूँ पृथ्वी का भार दूर करने के लिए, असुरों का वध करने के लिए। तो अभयो बल, वैसे मूर्तिमान बल है ही पर अब अभय हो गए। विहाय सार्थम इव हरम तमात्मन, उन्होंने सोचा कि ये तो सार्थम हमारे गोप समूह से छुड़ा करके हमको हर रहा है, अथवा विहायसा अर्थम इव हरंतम, आकाश मार्ग से हमें हर कर ऐसे ले जा रहा है जैसे कोई धन चुरा करके ले जा रहा है। ये सोच करके उन्हें क्रोध आ गया, गुस्सा क्रोध में, और क्रोध में अब कोई हथियार तो लिए नहीं थे, मुष्टिका बांधे और मारे उसके सिर पर मारते उसके सिर फट गए, और अब वो कहे को उड़ने जाए, वो उस तरह से धड़ाम से गिरा वहां पर बट भांडीर बट के पास जहां पर बच्चे खेल कर रहे थे, और उसी डेस्टिनेशन पर ले जाकर के गिराए बलराम से। गिरते समय कैसा दृश्य हुआ, बहुत बड़ा शरीर था, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जैसे भगवान इंद्र ने पर्वत पर वज्र मारा था और पर्वत गिरे थे धड़ाम धड़ाम जहां तहां बहुत आवाज करते हुए, वैसे गिरा वो एक मुष्टिका से गिर पड़ा, और श्री बलराम जी उसी के ऊपर गिरे, मतलब चढ़े चढ़े ही आए। भगवान की अद्भुत लीला है। जो लोग श्रीमद् भागवतम के शब्दों पर ठीक से विचार करते हुए चलते हैं उन्हें कभी भी भगवान बलराम और श्री कृष्ण पर शंका नहीं हो सकती, कभी नहीं स्वीकार कर सकते कि मनुष्य है या ये है या वो है ऐसा है। जो लोग ठीक से पढ़ते नहीं वही शंका करते। इतने बड़े दैत्य को एक मुष्टिका से बलराम जी ने विफल कर रहे हैं, गिर गया। रुसा हनत छिरसी दृढ़ेन मुष्टिना सुराधिपो गिरिमिव वज्र रंधसा, जैसे सुराधिप देवराज इंद्र वज्र के वेग से गिरिम पर्वत को गिराए थे, ऐसे बलराम जी ने गिराए। वज्र स्थानीय है बलराम जी की मुष्टिका, और सुराधिप के स्थान पर बलराम जी, और प्रलंबासुर गिरी स्थान, इस तरह से मारा तो गिरा। दृष्ट्वा स आहतः सपद विशीर्ण मस्तको, दो बार उदाहरण दे रहे हैं एक ही चीज का, ध्यान से सुनिए। एक बार तो दे दिए सुराधिप गिरिमिव वज्र रंगसा, दूसरे श्लोक में बोल रहे हैं स आहतः सपद विशीर्ण मस्तको, जैसे ही बलराम जी ने मुष्टिका मारा तो उसके सिर कई टुकड़े हो गए, विशेषण सिर का पता ही नहीं चला कि कितना टुकड़ा में चला गया। कैसा वेग होगा भगवान के हाथ का, वो अद्भुत हाथ है। मुखाद वमन रुधिरम, और मुख से बलबल बल खून फेंकने लगा, अपस्मृतो मूर्छित हो गया असुर। महारवम, और जोर से चिल्ला रहा था लगने से, बहुत जोर की आवाज कर रहा था। व्यसु निष्प्राण हो गया आकाश में ही, अपतत समीर महारवम समीर, बहुत उच्च स्वर से चित्कार करता हुआ निष्प्राण होकर के गिरा। कैसे गिरिर जथा मघवत आयुधा, जैसे पर्वत गिरे थे मघवत मघवान के इंद्र के आयुध से वज्र से आहत होकर के गिरे थे। तो दो उदाहरण देने की क्या जरूरत है, वहां गिरने का उदाहरण नहीं दिए थे ऊपर, केवल मारने का दिए थे, और यहां गिरने का दे रहे। भगवान इंद्र ने जब मारा था पर्वतों को तो उस समय विच्छिन्न भिन्न हो गए थे, कई टुकड़े में होकर के गिर गए जहां तहां। तो मारने के संदर्भ में पहला उदाहरण है और दूसरा गिरने के संदर्भ में उदाहरण, मतलब बहुत बड़ा शरीर वाला था। तो मारने में हाथ की मजबूती का वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं, वज्र जैसा मारा, और गिरने में प्रलम्बासुर का उदाहरण दे रहे हैं। तो प्रलम्बासुर को पर्वत के साथ, बहुत बड़ा शरीर था, ऐसे लगा कि जैसे धड़ाम से पर्वत गिर गया पृथ्वी पर। बच्चे तो सब डर गए थे, कुछ देर तक उन्हें पता ही नहीं चला कि बलराम जी को लेकर के कहां गया, वो नहीं जानते थे कि असुर है, और न तो कृष्ण ने कुछ कहा, कृष्ण चुपचाप थे। तो बच्चे सब सोचने लगे वो कहां छिप गए दोनों, बलराम और ऊपर और वो प्रलम्ब नहीं, कोई दूसरा सखा जिसका वेश धारण करके प्रलम्ब आया था। तो सोच ही रहे थे तब तक बलराम जी ने मारा और वो गिरा धराम से। बच्चे जा करके देखे, दृष्ट्वा प्रलम्बम निहतम बलेन बलशालिना गोपा सुदुस्मिताया संसाधु साधितिवादिनः। तो समस्त गोप जुटे, देखे वो सखा नहीं था, तो बलराम को जो ढो कर ले गया था वो बहुत बड़ा असुर था और मर गया, महाबलशाली बल ने मार दिया। तो गोप सब बहुत विस्मित हुए, आश्चर्यचकित हो गए और बलराम जी को साधु 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 बहुत अच्छा कह करके आलिंगन करने लगे सब। अरे क्या हुआ, कहाँ ले गया, वो कौन था, पहले नहीं पहचाना, तो पूछ रहे थे। बलराम जी कहने लगे, वो बहुत ऊंचा ले गया था, ऐसे था, ये था, वो था, ऐसे था, मैंने मारा तब वो गिरा। खूब आलिंगन कर रहे थे बच्चे, जय जयकार कर रहे थे। आशीषो भी गृणंतस्तम, और श्री बलराम जी को आशीर्वाद दे रहे थे बच्चे, स्नेह से आशीर्वाद निकलता है। आशीषश्चा भी गृणंत, आशीर्वाद दे रहे थे कि इसी तरह अपने छोटे भाई के साथ जुग जुग तक ब्रज में जिया करो, जियो, और तुम्हारा कोई भी शत्रु इसी तरह नष्ट हो जाए, तुम चिरंजीवी रहो, सुखी रहो, धनी बनो, सब तरह से सुखी रहो, भगवान तुमको सुखी रखे। भगवान को आशीर्वाद दिया जा रहा है यही तो प्रेम है वास्तव में। आशीषो भी गृणंतस्तम प्रशंसुस्त तदारण, आशीर्वाद दे रहे थे और उनकी प्रशंसा कर रहे थे। तो आशीर्वाद भी बलराम जी के योग्य थे और प्रशंसा भी उनके योग्य थे। इसमें प्रश्न होगा, आशीर्वाद क्या उनके योग्य थे? अगर उनको आशीर्वाद दिया जा रहा है कि चिरंजीवी हो, तो चिरंजीवी तो है ही, ये उनके योग्य क्या है? बाल लीला के योग्य है, ये भाव है। ऐसे आशीर्वाद के योग्य थे बलराम जी। सुखदेव गोस्वामी भी वात्सल्य भाव में आ गए हैं, तो कहते हैं ठीक आशीर्वाद, और प्रशंसा भी उनके लिए उचित। ये कौन प्रशंसा की बात थी, एक छोटे से असुर का वध कर देना, जिनके एक फूंक से ब्रह्मांड जल कर राख हो जाता है, और वे संकर्षण देव बलराम जी की कला है, अंश के अंश है। तो ये कौन प्रशंसा की बात है कि बलराम जी एक असुर का वध कर दिए, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते तदर्हण, ये योग्य था। जब गोप है, एक छोटा सा बच्चा है और इतना बड़ा काम कर दिए, तो ठीक है प्रशंसा। तद अर्हणम प्रत्यागतम इवालिंग प्रेम विह्वल चेत, सभी सखा ऐसे मानते थे कि बलराम मर करके आ गया, असुर ले गया, तो एक प्रकार से मृत्यु के मुख से लौट करके आ गया, तो खूब आलिंगन कर रहे थे प्रेम से। कोई कोई रो रहे थे, विह्वल चित थे कि भगवान बहुत संकट से उबार लिए बलराम तुमको। इन बेचारों को पता नहीं था कि यही भगवान है दोनों भगवान है यहाँ आशीर्वाद दे रहे, यही प्रेम है। तो भगवान को आशीर्वाद देना चाहिए, भगवान चाहते हैं, भगवान ने माधवेंद्र पुरी जी को कहा था कि हमारे लिए चंदन लाइए, मैं बहुत दिन से जमीन में पड़ा रहा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं चाहता हूँ चंदन ले किया जाए तो मेरा शरीर कुछ ठंडा होगा, शीतल होगा। तो माधवेंद्र पुरी जी कितना परिश्रम किए भगवान के लिए, एक सन्यासी पैदल चलकर साउथ इंडिया गया वृंदावन से, और 40 शेर चंदन की लकड़ी लेकर चले, एक मन उसमें होता था, लगभग 36-37 किलो होगा, पैदल लेकर के आ रहे। भगवान को सहन नहीं हुआ तो रेमुड़ा में उन्होंने कहा कि मुझने और गोपीनाथ जी में कोई भेद नहीं है, यहीं दे दीजिए। भगवान अपने भक्त के परिश्रम का भार सहन नहीं कर सकते, लेकिन भक्तों का ये भाव है, वास्तव में भगवान आश्रित है भक्तों पर, खास करके अर्चा विग्रह के रूप में, डीटी के रूप में अपेक्षा करते हैं कि हमें कुछ खिलाया जाए, हमारी सेवा किया जाए। तो सुखदेव गोस्वामी जैसा प्रमाणिक आचार्य कह रहा है यह उचित, बच्चे आशीर्वाद दे रहे हैं बलराम जी को तो कहते हैं ठीक कर रहे हैं, इसी को भक्ति कहते हैं। अन्यथा मन में यदि भावना हो हमेशा कि भगवान तो विश्वम्भर हैं, विश्व का पालन करते हैं, हम क्या उनके लिए कर सकते हैं, इसलिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ऐसा कहते भी हैं लोग कि जो दुनिया को खिला रहा है उसको क्या खिलाना है, दुनिया को खिला रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है। एक बार एक व्यक्ति हमसे प्रश्न किया कि भगवान सब कुछ दिया है तो उसको क्या देना है, तो मैं कहा किसको दोगे, जो नहीं दिया है उसको किसको देना चाहते हो? वो तो फेर में पड़ गया, अब क्या कहें। इस संसार में आदमी कुछ उसी को देता है ना जो दिया है, तो भगवान सब कुछ दिया है तो क्यों नहीं उनको दिया जाएगा, वास्तव में वही दान के पात्र है, उनको ही देना चाहिए, और उनको देने पर सबको मिल जाता है, यह सिद्धांत है। जैसे वृक्ष के मूल में कुछ देने पर वो वस्तु वृक्ष के शाखा पर शाखा सबको मिल जाती है, तो जो दिया है उसी को देंगे ना। और दूसरी बात है कि संबंध से दिया जाता है, तो संबंध ही सबसे निकटतम, सबसे महान, सब समय सभी देश में भगवान है हमारे, तो संबंध की दृष्टि से भी देना है, और वो दिए हैं इसलिए उनको देना है, उन्हीं की वस्तु उनको देना है, तो दिए वस्तु को बिंदुत्व भीमा स्मार। श्रीमद् भागवतम इस रहस्य को, इस शुद्ध भक्ति की बात को कहता है कि भगवान को आशीर्वाद देना चाहिए, भगवान आशीर्वाद चाहते। श्री बलराम जी उस आशीर्वाद को सुनकर यह नहीं कहे कि अरे क्या आशीर्वाद दोगे, मैं ही तो ईश्वर हूँ, ये हूँ वो, मेरी कृपा से सब होता है, नहीं, सुन रहे थे और अच्छा मान रहे थे, आलिंगन कर रहे थे। तो इधर गोप सखा सब आशीर्वाद दे रहे थे, आलिंगन कर रहे थे, प्रेम के वचन बोल रहे थे श्री बलराम जी के प्रति, और ऊपर से देवता बहुत खुश थे प्रलंब के मरने पर, वे तो डायरेक्ट फूल बरसाने लगे और जय जय करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, पापे प्रलंबे निहते देवा परम निर्वृता, देवगण तो परम निर्वृत हुए, निर्वृत का अर्थ है सुखी, देवता बहुत सुखी हुए, और अभ्यवर्षन बलम माल्य सुसंस्तु साधु साधु, ऊपर आकाश से भी जय जय साधु साधु की ध्वनि होने लगी, फूलों की वर्षा हो रही थी। बलराम जी का फूल को माल्य कहते हैं, जिससे माला बनाई जाए वो है माल्य, फूल को बांधने से माला बनती है, तो इसलिए इसको माल्य कहते हैं, तो माल्य की वर्षा करने लगी। इधर गोप सखा जय जयकार कर रहे हैं, उधर वो जय जयकार कर रहे हैं, तो खेल में बहुत बड़ा आवेश हो गया, इतना बड़ा असुर मारा गया है, इतने खतरा के बाद बलराम जी बचे हैं, लेकिन भगवान के साथ खेलने का इतना सुख था कि बच्चे फिर उस घटना को भूल कर खेलना चालू करते हैं। क्यों नहीं आवेश हो जहां साक्षात परब्रह्म भगवान खेल रहे हैं, क्यों नहीं आवेश होगा। और जैसे बच्चों का आवेश खेलने में हुआ तो गौओं का आवेश चरने में हुआ, वो अभी भगवान की इच्छा से हुआ। वे चरने लगी, चरते 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 ऐसे स्थान पर चली गई जहाँ केवल मुंज ही मुंज था, मुंजाटरी, और बच्चे इधर खेल रहे थे उधर गौए चर रहे थे, उसी समय आग लगी। तो ये कथा तो हम कल कहेंगे दवागली पान की। पर बच्चे खेलने लगे फिर से, इतना ध्यान रखना चाहिए, पुनः खेल वैसे जैसे पहले वर्णन किया था दोपहर के पहले वैसे फिर चालू किए खेल। ऐसी घटना पर तो अगर मान लीजिए मानव समाज में ऐसी घटना कोई हो जाए तो आदमी गाय साय हाँक करके भागे खेलेगा, लेकिन बच्चे इतना सुखी थे कृष्ण के साथ कि खेल का आवेश उनका रुका नहीं, खेलते रहे खेलते रहे। ये भगवान के साथ खेलने का आवेश। हरे कृष्ण।